اس کے بعد اب تیسری خادمہ انسانیت کی جو انسانوں کے لیے بہت کچھ کر رہی ہے، اور اسی کے اوپر سورت کا نام سورۃ النحل ہے. آئیے ان آیتوں کو دیکھتے ہیں. فرمایا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، اور ڈال دی آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات کہ بنایا کرو پہاڑوں میں اپنے چھتے یعنی گھر. وَمِنَ الشَّجَرِ، اور درختوں کی شاخوں میں. وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور ان چھپروں میں جو لوگ بناتے ہیں. یارشون عرش سے ہے، جیسے چھتے ہوتی ہیں نا، عرشہ بلند جگہوں پہ عموماً بنتی ہیں یہ چیزیں. یہاں مشکل لفظ پہلے دیکھ لیتے ہیں. اوہا کا تو لفظ پیچھے بہت دفعہ آیا، وہی کے لیے آتا ہے. خاموش اشارہ، تیز اشارہ، وہی خفی کو کہتے ہیں. الہام کے معنوں میں بھی آتا ہے، سمجھ بوجھ. یہ وہ وہی نہیں ہے جو انبیاء کی طرف آتی ہے، ورنہ تو شہد کی مکھی کو بھی آپ نبی بنا دیں گے. پیچھے ہم بات کر چکے اور سورہ شورہ میں تفصیل سے اس پہ بات آتی ہے کہ وہی کی جو مختلف اقسام ہوتی ہیں تو وہی سمجھ بوجھ کے معنوں میں بھی ہے. اور یہ بہت بڑی آیت دلیل دی جاتی ہے ان لوگوں کو جو مجبور کرتے ہیں اس بات پہ کہ حضرت مریم بھی نبیہ تھی. اگر وہ اس کو مانیں گے تو پھر ان کو شہد کی مکھی کو بھی نبیہ ماننا پڑے گا، اور ام موسیٰ کو بھی ماننا پڑے گا، کیونکہ آگے جا کے ان کے لیے بھی لفظ آتا ہے کہ ہم نے ام موسیٰ کو وحی کی. تو لہٰذا یہاں وحی سے مراد خاموش اشارہ ہے، یہ جبلت کے اندر، جیسے آپ آج کے دور میں کہہ سکتے ہیں کہ اس کی انسٹنکٹ میں یہ چیز فیڈ کر دی. جیسے آپ اپنے کمپیوٹر کے اندر ایکسل ڈال دیتے ہیں تاکہ جب بھی آپ ایکسل کی شیٹ کھولیں تو وہ آپ کو دکھا دے. اشارہ کیا کہ اس کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈال دی کہ تم یہ کام کرو، پروگرامنگ کر دی. اللہ تعالیٰ نے مکھی کو یہ حکم دے دیا. ان تخیزی میں جو یا ہے نا، یہ مؤنث کی ہے. اخذ یا اخذ پیچھے جو لفظ پڑھ چکے ہیں یہ وہی لفظ ہے کہ بناؤ. من الجبالی، پہاڑوں میں. بیوتن گھر، یعنی اونچی جگہوں پہ بناؤ تاکہ لوگ تمہارے چھتوں کو خراب نہ کر سکے، پتھر نہ مار سکے. ٹھیک ہے، اب یہاں سے شہد کی مکھی کی بات شروع ہوئی. پہلے اگلی آیتوں کو بھی کر کے تو میں آپ کو پھر ساتھ ہی اس پہ لے کے چلوں گی. تھوڑے سے مشکل لفظوں کو واضح کرنا چاہتی ہوں. پہلے تو کہہ دیا کہ گھر بناؤ. امیجن کریں، شہد کی مکھی ہے، اس کے اندر عقل ہے، ہوش ہے، سمجھ ہے. اب اللہ تعالیٰ اس کو کچھ حکم دے رہے ہیں، کہا کہ گھر بنا لو. اللہ تعالیٰ کہاں بناؤں، کہاں، تھوڑے سے پہاڑوں میں بنا لو، کچھ چھتوں پہ بنا لو، اونچی جگہ پہ بنا لو. پھر کیا کرو، ثم کلی، پھر کھاؤ، رس چوسا کرو. من کل الثمرات، ہر قسم کے پھلوں سے. پھر کیا کرو، فسلکی سبل ربک ذللا، پس چلتی رہا کرو اپنے رب کی آسان کی ہوئی راہوں پر. طریقہ دیکھیے، پہلے گھر بناتی ہے. جو ترتیب یہاں آپ کو دکھ رہی ہے نا، یہی ترتیب آپ کو شہد کی مکھی کے شہد بنانے میں دکھے گی. پہلے گھر بناؤ، کہاں بناؤ، بلندی پہ بناؤ، پھر کھاؤ. گھر بنا کے پھر وہ نکلتی ہے رس چوسنے، پھلوں کے، پھولوں کا، کے جو پولنس لیتی ہے. فسلکی، پھر اس پھل کو لے کے جو اس نے رس چوسا ہوتا ہے واپس آتی ہے. سبل، راستے کی جمع. فسلکی سلکا سے ہے، چلتی ہے. کدھر، ذلولا، مسخر کی ہوئی. ذلیل، ذلول، پیچھے ہم پڑھ چکے گائے کے واقعے میں بھی سورہ بقرہ میں آیا تھا. یعنی جو راستے رب نے بتایا وہاں سے نکلتی ہے. پھر کیا ہوگا، وہاں جا کے یخرج من بطونہا شراب، یوں نکلتا ہے اس کے شکموں میں سے، اس کے پیٹوں میں سے ایک شربت. کیسا، مختلف الوانہ، مختلف رنگوں والا. الوان لون کی جمع، نیچرل کلر کو کہتے ہیں، اصل رنگ جو ہوتا ہے. فی ہی شفاء للناس، اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے. اللہ نے اتنا کچھ اس کے اندر رکھا ہوا ہے. اور ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں قدرت الہی کی نشانیاں ہیں، ان کو وہ لوگ سمجھتے ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں. یہ دو آیتیں ہیں، لیکن دیکھا جائے تو اس کے اندر ایک پورا سیٹ اپ موجود ہے جو شہد کی مکھی کے شہد بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ شہد کی مکھی کیا کچھ کرتی ہے. ایک بات تو یہاں ساری جملوں میں جو سمجھ آتی ہے کہ جتنے بھی صیغے استعمال کیے گئے یہ مؤنث کے ہیں، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ شہد بنانے کا پورا پروسیس یہ فیمیل مکھیاں کرتی ہیں. خوش ہو گئے ہیں، میل کا بس ایک ہی کام ہوتا ہے کہ وہ فرٹیلائز کرتا ہے مکھی کو، और एक दफ़ा फर्टिलाइज़ कर दे तो बाकी मक्खियाँ उसको वैसे ही पीछे कर देती हैं, और वो भी वही करता है जो बहुत मज़बूत उसके अंदर ताकत होती है, और सिर्फ़ उस मौसम में वो करीब आ पाता है जब फर्टिलाइजेशन का मौका आता है। ख़िज़ाम में उनको वैसे ही वो दूर भगा देती हैं बाकी मक्खियाँ मिलके। शहद बनाने का अमल नाकाबिले यकीन हद तक ऑर्गेनाइज्ड, और ऐसे लगता है कि पीछे कितने मैनेजर हैं, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है जो पीछे से ट्रैक कर रहा है। खुलासा बताती हूँ, फिर आपको एक प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, कुछ चीज़ें साथ साथ भी देखेंगे आप। मक्खी की दो किस्में होती हैं, शहद की मक्खी दो तरह की होती है, एक होती है क्वीन मक्खी, मलका मक्खी बोलते हैं उसको, और दूसरी होती हैं वर्कर्स, आमिल मक्खियाँ। क्वीन मक्खी उनकी लीडर होती है, वो ख़ुद कुछ नहीं करती लेकिन वो उस काम को करवाने में उनकी मदद करती है, यानी सारे का सारा काम वो उनसे लेती है। जितना काम होता है ये उसकी मददगार मक्खियाँ करती हैं, और मक्खियाँ किस तरीके से ये सारा कुछ करती हैं, अल्लाह अकबर। आप देखिए कि शहद को बनाने के लिए एक पूरा नेटवर्क है, जिसको आज के दौर में हम टीम वर्क कह सकते हैं। थोड़ा सा आपको पढ़ के सुनाती हूँ कि शहद जब रस एक ख़ास क्वांटिटी तक पहुँचता है फिर शहद बनता है। पहले मरहले पर पानी की तरह पतला होता है। कुछ मक्खियाँ सिर्फ इस काम पर मुकर्रर हैं कि अपने परों से पानी उड़ाती हैं, जैसे पंखा चलते हैं ना, यूँ पंखा चलती रहती हैं तो पानी उड़ता जाता है, वेपोरेट होता है, नीचे थिक रह जाता है और एक मीठा लिक्विड बाकी रह जाता है। फिर दूसरी किस्म की मक्खियाँ हैं जो सारे जूस को चूस लेती हैं, जो थिक जूस बनता है उसको चूस लेती हैं, और मक्खी के मुंह में ख़ास किस्म के ग्लैंड्स होते हैं जो इसको शहद में बदल देते हैं। आज तक लोग सिंथेटिकली ये ग्लैंड्स बनाने में कामयाब नहीं हुए, वरना ये शहद बहुत ही सस्ता और आप फैक्ट्रियों की फैक्ट्रियों में लगा सकें। और शहद की मक्खी जो है सबसे पहले जब अपना घर बनाती है, हेक्टागोनल यानी छः कोनों वाला इसका खाना होता है, और किनारों से शुरू करती है बुनना। आपने कभी कुरेशिया बुना हो तो उसको इमेजिनेशन में लाएं, इसके छः कोने होते हैं, यानी जैसे अगर आप देखें कि यूं करके यूं और बीच में भी एक लाइन है ना, हेक्सागोनल, यूं इसका डब्बा होता है। ये वो कैफियत है ज्योमेट्री में, अभी आपको दिखाएंगे भी, कि जिसमें मैक्सिमम जगह इस्तेमाल होती है। ये जैसे आपका क्लासरूम हम करते रहते हैं ना, यहाँ लगा दें तो ये कोना यूज़ कर लें, ये कर दें, यहाँ सेटिंग कर देंगे तो ये होगा। आप तो पता नहीं कम सोचते हैं, मैं ज़्यादा सोचती रहती हूँ कि इतनी जगह है तो इधर क्या आएगा, इतनी है तो इतनी क्या आएगी। तो शहद की मक्खियाँ इस तरतीब से छत्ता बनाती हैं कि कम जगह पे ज़्यादा शहद आ सके, वरना तो इतने बड़े बड़े छत्ते आपको दुनिया में लगे हुए दिखे, पता चला बीच में वैसी खाली जगह है और कह दें जगह ख़त्म हो गई है, ऐसी कैफियत नहीं है। फिर उसके बाद जब वो किनारों से उसको बुनना शुरू करती है ना, तो एंड पे लाके वो बीच में मिला देती हैं। कभी आप लोगों ने भी कोई ऐसी चीज़ बुनी होगी तो वो एंड पे एक तरह आ जाती है। फिर उसके बाद आप देखिए कि कुछ मक्खियाँ होती हैं ना, वो उड़ती हैं, कितना उड़ती हैं ये भी कुछ फिगर्स नोट कर लें, और बस मैं तो दंग हूँ, मेरा तो बिल्कुल जिसको कहना चाहिए ना कि दिल बंद होता है इन चीज़ों को पढ़ते पढ़ाते बताते हुए, कि ऐसे लगता है कि अल्लाह की ज़ात जो है वो बिल्कुल सामने है। हमने देखा कि यहाँ चलने की बात है ना, फ़र्स्ट लुकी सुबुल रब्बी का जुलूला, फ़र्स्ट लुकी का लफ्ज़ सलका से, सलका गुजारना गुजरना, पीछे भी हम पढ़ चुके हैं कुरान ऐसे लोगों के दिलों में सुराख की तरह गुजरता है। सुबुला सबील की जमा, जलूल नरम और आसान रास्ते में, कहते हैं कि जिन रास्तों पे मक्खी को जाना है उसका पूरा ट्रैक जो है उसको पहले से अल्लाह ने दिया हुआ है। मैं इस लफ्ज़ को पढ़ती हूँ तो मुझे यहाँ की या किसी भी बहुत ऑर्गेनाइज जगह की बसें ट्रेनें उनके रूट समझ याद आ जाते हैं, और यहाँ रह के तो आप बहुत अच्छी तरह समझते हैं ना, सिर्फ़ एक एक मिनट के फ़र्क से आप बस मिस कर देंगे, ट्रेन मिस करेंगे, और एक का दूसरी से कनेक्शन मिस करेंगे। जिस जिस रास्ते पर इसको जाना होता है उसका ना सिर्फ इनको पता होता है, बल्कि जिस रास्ते से एक मक्खी गुजरती है ना, दूसरी मक्खियों को पता होता है ये इधर से गुजर गई है, वो वहाँ नहीं गुजरती। जिन फूलों से रस चूस के चली जाती है ना, उस फूल के ऊपर एक किस्म का इतर फेंक आती है, तो दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि अब इस फूल में कुछ नहीं रहा, हमारा हाल एक काम को कर रहा फिर बार बार वही कर रहे हैं, सब ने वही करना है, वो पता नहीं था जी हो गया। हर एक दफ़ा जिस जगह से गुजर जाता है दूसरा वहाँ नहीं जाता, और फिर जो करके जाती है कहाँ तक जाते हैं, कहते हैं कि 50,000 मील, तकरीबन 50,000 माइल की मुसाफत तय करनी पड़ती है मक्खी को कम से कम एक हफ्ते में, यानी इसकी मुख्तलिफ किस्म की जो इनकी रफ़्तार होती है, बास जो है वो 24 मील फ़ी घंटा की रफ़्तार से सफ़र करती हैं मक्खियाँ। सोचिए 24 मील फ़ी घंटा, कहते हैं कि एक मक्खी अपनी जिंदगी में इतना चलती है कि अगर इस ग्लोब के गिर्द उसका एक दायरा खींच दिया जाए तो वो दायरा पूरा हो जाए। फस लुकी सुबुला रब्बी का जुलूला, हम कैसे ना चलें अल्लाह के रास्ते में, हम कैसे थकने लगते हैं। हम कहते हैं हम दूर बड़ी रहते हैं, हमारे लिए मौसम ना मुवाफक है, ये है वो है। सारी ज़िंदगी में एक मक्खी सिर्फ आधी चम्मच शहद बना सकती है और उसके लिए उसको तकरीबन 56,000 माइल सफ़र तय करना पड़ता है। कोई कर सकता है इंसान ये बातें सारी? इनको हम अल्लाह की इबादत में कितना थकते हैं, मक्खी का दिमाग कितना है और काम कितने बड़े करती है, हम देखे कहाँ करते हैं। क्या खूबसूरत तरीके से वो अल्लाह के रास्ते में निकलती है। पहले प्रेजेंटेशन देखते हैं, फिर आपको कुछ चीज़ें दिखाती हूँ इसको करके, और आप इसको देखते हुए वाकई सुभान अल्लाह दिल की गहराई से पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह हक अदा होगा कि अल्लाह की ज़ात के सिवा कोई नहीं ये सिखाने वाला।
Honeybees live in colonies and hives they construct with great care. Inside each hive, there are thousands of small hexagonal combs made to store the honey. In order to fill these combs with honey, the bees have to collect nectar from flowers. This is indeed a painstaking task. The latest scientific research has revealed that in order to produce half a kilo of honey, the bees must visit about 4 million individual flowers.
4 million फूलों को जाके चूसती है सिर्फ।
Finding these flowers is in itself a difficult job. For this, the bees appoint some scouts and foragers from among their number. How do forager bees find the way to flowers in tracts of land that are vast compared to their own size?
देखिए इसका जिस्म कितना छोटा है और कितना चलती है।
How do they find their way back to the hive without getting lost?
और गुम भी नहीं होती रास्ते।
How do they explain to the other bees the way to the source of the flowers?
फिर दूसरी मक्खियों को बताती है कि इधर फूल हैं, आओ। ये कैसे बताती है? विंग्स के साथ।
We come up with some very interesting facts. On the screen, you see a bee that has discovered a source of flowers. The job of this forager bee is to return to the hive and inform the other bees of the place where it found the flowers. As soon as the forager bee returns to its hive, it starts to describe the location of the flower's source it has discovered to the other bees. First, it lets the other bees taste the small bit of the nectar it has collected from the flowers, which gives them information about its quality. Then it begins its main task, describing the direction to the flowers. It does this in a very interesting way, by dancing. The forager begins to dance in the middle of the hive by shaking its body. It is difficult to believe, but in the course of this dance, the shaking will give the other bees all the information about where the flowers are located. All these facts should be carefully considered. Where did the bees get their amazing organization? How can a small insect that does not have the faculty of thought or intellect act as a forager? How can it think to search out sources of nutrients and inform its nestmates of them? Even if it thought about it, how could it develop a dance technique to inform the others where the source was located and the distance to it? How can bees in the hive understand the meaning of the complicated movements and vibrations of the messenger bees? That Darwin's theory of evolution, which claims that life on Earth came about by chance, has no answer to these questions. Each of these special qualities of bees show that their creator gave them to them. Allah created them and inspired them to do their work. This fact is in the Quran. Your Lord inspired the bees. Make hives in the mountains and in the trees and in what they build. Then eat of all the fruits and walk in the ways of your Lord submissively. There comes forth from within it a beverage of many colors, in which there is a healing for men. Most surely there is a sign in this for people who reflect.
अब देखिए कि इसमें हमने जो चीज़ें देखी हैं उसका ख़ुलासा क्या है, अभी अगली भी दिखाते हैं अभी साथ ही। हाँ जी, कि किस तरीके से शहद की मक्खी जो है वो इतना सफ़र तय करती है। आप देखें कि हज़ारों मील, 50,000 मील का सफ़र तय करती है और 30 लाख उड़ानें उड़ती है और 20 लाख फूलों का, और बल्कि इन्होंने भी बताया कि हाफ पाउंड शहद बनाने के लिए तकरीबन 4 मिलियन फूलों का रस लेना पड़ता है। अब ये सारा कुछ हम सुनते जाएँ और साथ ही साथ हम इसको दूसरी तरफ भी एंगल लेके देखें कि जो चीज़ अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए पेट के फ़ायदे किए, अभी शहद पे हम बात करेंगे, उसके लिए इतना कुछ है, तो जिसमें रूहानी ग़िज़ा है उसके लिए क्या नहीं होना चाहिए। शहद की मक्खी की ज़िंदगी में जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा दिख रही है वो एक तो मेहनत है, दूसरी बात है इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, जो अल्लाह ने कहा वहीं से जाती है, उधर से ही जाती है। तीसरी चीज़ हमें मिलती है टीम वर्क, मिल के काम करती हैं। फिर अगली बात यह कि उनको बड़ा बनने का शौक़ नहीं है, ख़ुद को नुमाया नहीं करती, क्योंकि जो नुमाया करेगा वो ख़ुद तो नुमाया हो जाएगा, काम नुमाया नहीं होता। फिर अगली चीज़ है फोकस्ड, फर्स्ट लुकी सुबूला रब्बी का जुलूला, आजजी नरमी, फिर मुसलसल काम करती हैं। फिर इसके बाद आप देखिए कि जो काम करती हैं उसके अंदर उसकी पूरी की पूरी नीयत क्या होती है कि मैं शहद प्रोड्यूस करूँ। अगर इन सारी चीज़ों को हम साथ मिलाएं तो अल्लाह के रास्ते के काम करने के लिए भी हमें इतनी ही मेहनत की ज़रूरत है, इतनी ही डेडिकेशन की ज़रूरत है, अपने फ़ायदे से बालातर होके दीन के फ़ायदे को हासिल करने की ज़रूरत है, इस नीयत को दिल में लाना है, फिर इसके लिए चलना पड़ेगा सुबूला रब्बी का, रब के रास्तों पर चलना खुशकिस्मत लोगों का काम है और नफ्स के रास्तों पर चलना तबाह होने वाली कौमों का हाल है। फिर इसके अंदर एक और चीज़ जो हमें दिखती है और वो कह के एक आलिम भी मक्खी की तरह 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 से फूलों से रस चूसता है। आपको पता है कि जो इल्म किसी को दिया जाता है वो कहाँ से आता है? दिमाग तो सबको अल्लाह ने दिया लेकिन उसमें डालना तो पड़ता है ना। एक इल्म वाला कितनी घाटियाँ तय करता है, कहाँ कहाँ से जाके इल्म सीखता है, फिर वो किसी को एक दो घंटा जाके कोई दर्स देने के या बात सिखाने के काबिल होता है। हर बंदे के बस में नहीं होता और ना ये मतलूब है कि सारे ही मक्खियों की तरह चले जाएं। ये भी तो हो सकता था ना कि अल्लाह ताला मक्खियों से शहद बनवाने की बजाय कोई नहर लगा देते, बारिश हो जाती। नहीं, अल्लाह ने बताया कि मक्खी जैसी एक हकीर चीज़ से इतनी कारामद चीज़ बनवा रहा हूँ, तुम किस बात का तकब्बुर करते हो, ना करो तुम काम, तुम्हारी मर्ज़ी। फिर अब देखिए कि जो इसके अंदर शहद की मक्खी का एक बेहतरीन किस्म का ऑर्गेनाइजेशन प्लान दिखता है वो हम सब के लिए काबिल तकलीद है। क्वीन मक्खी की सारे सुनते हैं, कोई ये नहीं कहता कि तुम ऐसी क्यों, अल्लाह ने उसको वो सलाहियत दी, उसके अंदर दिमाग बहुत बड़ा होता है, क्वीन मक्खी का ब्रेन बड़ा होता है, लेकिन दूसरी मक्खियाँ जो है उनकी बॉडी स्ट्रांग होती है। फिर इसके बाद आप देखिए कि जो शहद बनता है ना तो एक एक कतरा जो है एक मक्खी डालती है और उसके पीछे एक दूसरी मक्खी होती है जो फौरन ऊपर मोम लगाती जाती है। अभी आपको दिखाते हैं एक और प्रेजेंटेशन कि शहद उसके पेट से निकलता है, पहले फल चूसती हैं, फिर वो उस पर डालती है एक और मक्खी, तीसरी मक्खी उसको सक करती है, फिर पेट में जाके कुछ ग्लैंड्स मिलते हैं तो वो रतूबत बनती है, फिर वो मक्खी उन खाली खोखों के अंदर जाके एक एक कतरा ड्रॉप करती है और एक एक ड्रॉप का सील्ड पैक उसको पहले ठंडा करती हैं। कुछ मक्खियां पंखे चल रही हैं ताकि ऊपर से ठंडा हो जाए, गरम गरम चीज़ बंद कर दी जाए, तो आपको पता है कि वो वैसे ही ख़राब हो जाती है। फिर अगली मक्खी जो है वो उसके ऊपर सील लगाती है। फिर इसी तरह कुछ गार्ड मक्खियाँ होती हैं, हिफाजत करती हैं, वो किसी कीड़े को नहीं आने देती, किसी मकोड़े को नहीं आने देती। कहते हैं कि अगर कोई मक्खी किसी जहरीले फल का या फूल का रस चूस ले तो वो गार्ड मक्खियाँ उसको अंदर ही नहीं आने देती। क्या आप मिट्टी वाले पाँव लेके अंदर नहीं आ सकते? आप साफ करें, कोई बीमार हो जाए, किसी के अंदर कोई और हो जाए, वो उनको बिल्कुल नहीं आने देती, कीड़े मकोड़ों को अंदर नहीं आने देती। ज़रा सोचे, शायद हमारा एक चम्मच खुली रह जाए तो कितनी चींटियाँ आ जाएं। तो छज्जों के पास क्यों नहीं होती? मुसलसल बाज़ मक्खियाँ जो है ना वो दरबान बन के भिन भिन करती हैं। फिर इसके पर जो है ना, इसके हिलने की भी आवाज़ बड़ी दिलचस्प है। किसी मक्खी को कहीं भी कोई फल दिखता है ना, फूल, तो ख़ुद नहीं चूसने लगती। हम तो कहते हैं चलो शुक्र है हमें पता चल गया इस खैर का, वो फ़ौरन जाके अभी आप जो देख रहे थे ना ट्विस्ट करती है, आठ का आदत बनता है। जैसे यूँ देखें, एट का लफ्ज़ लिखते हैं ना, यूँ गोल करके फिर यूँ से जाते हैं। मक्खी अपनी दूसरी मक्खियों के सामने आके जूँ ही यूँ यूँ ट्विस्ट करती है ना, तो सारी मक्खियों को पता चल जाता है कि इसके पास कोई ख़बर है। वो भागती है, बाकी सारी उसके पीछे चली जाती हैं। कभी सोचें उसका दिमाग कितना है और क्या कुछ करती है, कैसे करती है, क्योंकि अल्लाह ने उसको बताया है। और जो बंदा भी वाकई काम करना चाहता है उसको इस तरह से होता है। 1400 साल पहले किसने बताई ये बातें सारी? आज हैरान है लोग इस पे। एक नॉन मुस्लिम है बेसिकली, तो उसने इस आयत को पढ़ा जब, तो उसने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ज़बरदस्त फातिह यानी विक्टोरियस, बा इल्म इंसान यानी नॉलेजेबल, फितरत के शेदाई यानी नेचर लवर, और मक्खियों के घर को बयान करने वाले हैं। यानी उसने क्रेडिट दे दिया कि इतनी एक्सप्लेनेशन के साथ तो मक्खियों को कोई और बयान नहीं कर सकता जितने तरीके से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। फिर आप देखिए कि आयत मक्का में नाजिल हो रही है, एक पौधा भी नहीं उगता था मक्का में, चले हरियाली सब्ज़ा ये तो मदीना में थी। क्या पता चला कि अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ ये इल्म है, ये इल्हामी इल्म है। आज ये वो दलाइल हैं कि जिसकी वजह से लोग इस्लाम को सच्चा मान रहे हैं दिल से। फिर आप देखिए एक और चीज़ कि दूर भी चली जाती है ना तो वापसी का रास्ता नहीं भूलती। हम तो ज़रा अपने रास्ते से 19 से 20 करें तो हम फ़ौरन सेलफोन ढूंढने लगते हैं कि किससे पूछे रास्ता। इतना इसका दिमाग होता है क्योंकि फोकस्ड होती है ना। देखिए जो बंदा खामोश रहता है ना वो जाते हुए भी रास्ता देख रहा होता है कि मैंने वापसी से इधर से ही आना है, और जो मुसलसल बातें करे, जिसका दिमाग कई चीज़ों में लगा हुआ है, सेलफोन पे इधर उधर, वो भूल जाते हैं। कोई किसी दूसरे के घर में नहीं आती, अपने घर में आती है। फिर एक और चीज़ देखिए कि सारे सीए मुअन्नस के हैं, मक्खियाँ तो नहीं, ये कहती कि सारे काम हमसे करवाए जाते हैं। नेचर का असूल है, प्रोडक्टिव चीज़ औरत है। अल्लाह सुब्हान व तआला के अंदर कुछ सिफ़ात है ना, उसने कुछ सिफ़ात मर्दों को दे दी और बहुत सारी सिफ़ात औरतों को दी। मसलन आप देखिए कि अल्लाह की ज़ात रज़्ज़ाक है, खिलाना पिलाना उसका काम है, क़वामियत अल्लाह ताला अल-क़य्यूम है, अल्लाह ने ये मर्दों को दे दी। अल्लाह ताला की ज़ात में अल-जबरूत जाबिर यानी स्ट्रॉन्गनेस है, मर्दों को दी। इसके बरक्स आप देखिए कि अल्लाह की ज़ात खालिक है, तो तख्लीक का काम अल्लाह ने औरत को दे दिया। अल्लाह की ज़ात रब है, तरबियत का काम औरत को दे दिया। अल्लाह की ज़ात नरम है, सॉफ्टनेस है अल्लाह ताला में, हाँ रिफ़ है अल्लाह में, अल्लाह ने औरतों को नरम बना दिया। तो अल्लाह ताला की ज़ात ये बंदे को एहसास दिलाती है कि औरत और मर्द की डिस्टिंग्विश होना कोई बात नहीं, तुम अपने अंदर खूबी पैदा करो। ये पूरी सूरत आपको औरत के भी हकूक का दिफा करती हुई दिखेगी कि किस तरीके से मर्द ना भी साथ दे, औरतें भी बहुत कुछ कर सकती हैं। मर्द का तो एक सहारा ही बहुत होता है, काम तो आप देखिए घरों में 90% औरतें ही करती हैं। सिर्फ मर्द की तो इजाज़त लेती होंगी, या अगर वो भी नहीं ज़रूरत, लेकिन अपने हिस्से का एक इंसान जब काम करता है तो वो कभी भी पीछे नहीं होता। तो आइए ज़रा थोड़ा सा शहद को देखते हैं कि शहद कैसे बनता है, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम देखेंगे आगे। कहते हैं ये जिसके ऊपर गम लगता है ना वो चिंगम की तरह होता है सील। चले देखते हैं फिर इसको बात करते हैं जी।
When you go into the country on a sunny day, the enchanting beauty of flowers draws your attention. When you examine the flowers a bit more closely, you come across another interesting creature. This is the honeybee, the most disciplined of nature's architects. Honeybees live in colonies and produce one of the world's most perfect foods, honey. They store the honey in the hexagonal honeycombs they build. But have you ever wondered why bees always make their combs hexagonal? The best way of building a storehouse with the greatest capacity, but using the least possible amount of materials, is to make the walls hexagonal. Let us consider the other shapes. If bees built their combs as cylinders or as pentagonal prisms, then gaps would emerge between them and less honey could be stored in the combs. A honey store of triangles or squares could be built without leaving any gaps. But here, mathematicians realized a crucial point. Of all these geometric shapes, the one with the shortest circumference is the hexagon. In short, a hexagonal comb is the best shape for ensuring maximum storage capacity with minimum wax. Another surprising fact about bees is their cooperation in building their combs. When someone sees a completed comb, he may well imagine that it was built as a single block. But bees actually start building their combs from completely different points. Hundreds of bees set about building the comb from three or four different places. They continue building until they meet in the middle. There is not the slightest imperfection at the juncture. Bees also calculate the angle of the individual cells to each other when building their comb. The back-to-back comb cells are always built at an angle of 13 degrees to the ground. That way, both sides of the comb slope upwards. This angle prevents the honey spilling out of the combs. There is a very interesting truth here. Bees exhibit these extraordinary characteristics from the moment they are born. From the moment they open their eyes, they possess the skill. So who is teaching bees this architectural art? The answer to this question is given in the Holy Quran. In this book, which God sent down to men to show them the true path, He reveals the secret of honeybees' superb abilities. Your Lord inspired the bees. Make hives in the mountains and in the trees and in what they build. Then eat of all the fruits and walk in the ways of your Lord submissively. From their bellies comes a drink with different colors, which contains healing for mankind. Most surely there is a sign in this for people who reflect. The secret of animals' extraordinary skills is the inspiration given them by God. And this applies to all living things, not just the honeybee.
वाकई इंसान की जुबान बंद हो जाती है ना कि इतनी छोटी सी मखलूक से अल्लाह की ज़ात इतना बड़ा काम करा रही है, तो हम क्या करेंगे। हम में से कोई भी अल्लाह की मजबूरी नहीं है। हनी पे भी थोड़ा सा दिखा दें इनको, वो एक पावर पॉइंट जो है इधर, ये देखिए कि हनी के फवायद भी थोड़े से साथ ही देख लेते हैं कि नबी सल्लम ने इसके बारे में कहा, और कुरान में भी आता है ना कि फ़ी ही शिफाउ लिन्नास। तो इसको देखते हैं कि हनी के क्या फ़वाद हैं, शहद जनी, अल्लाह ताला ने इसमें क्या शिफा रखी है। रिवायात से भी इसकी तस्दीक होती है कि एक सहाबी नबी सल्लम के पास आए और कहने लगे कि मेरे भाई का पेट ख़राब है, तो आपने कहा कि शहद दो। वो गए और शहद दिया, फिर आगे कहा अल्लाह के नबी और ख़राब हो गया पेट, तो आपने कहा कि सदक अल्लाह व कज़ब बतन अखी का, अल्लाह ने सच कहा है और तेरे रब का कौल बहर हाल सच्चा है। कहा और दो शहद। जब तीसरे भी दिन दिया तो ठीक हो गया। पता क्या चला कि एक ख़ास अमाउंट देनी थी जिससे अभी तक नहीं दिया था। तो ये देखेंगे कि शहद और सिनेमन दारचीनी, इनके फवायद। इसके अंदर कुछ बीमारियों की शिफा है कि नेचुरल चीज़ों में, कहते हैं कि शहद और दारचीनी जो है ये बहुत सारी बीमारियों की दवा है, और दुनिया में ये अवेलेबल भी है हर जगह पर, कई चीज़ों में यूज़ होता है। नेक्स्ट करें, ये पावर पॉइंट आप बाद में इसको इनको भेज भी सकते हैं अगर कोई डिटेल लेना चाहे। नेक्स्ट करें इसका, जैसे ये जिस्म की बीमारी होती है ना, एथराइटिस जो जोड़ों की, उसका इलाज है इसमें शहद को। इसका पूरा एक तरीका लिखा हुआ है कैसे है। फिर किसी के बाल गिरते हैं तो उसके लिए भी इलाज है। फिर ब्लैडर इन्फेक्शन यानी पेशाब की जो बीमारियाँ हैं उसके अंदर इसमें तरीका लिखा हुआ है कि किस तरीके से पानी को में इस्तेमाल करें डाल के हनी को। फिर दांत का दर्द कभी हो तो उसके लिए शहद और सिनेमन पाउडर को मिलाकर 5 चम्मच, ये लिखा हुआ इसका तरीका, मैं इसकी डिटेल नहीं देती लेकिन आप बाद में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, फिर कोलेस्ट्रॉल लेवल को बेहतर करने के लिए गर्म पानी के अंदर हनी आप डाल सकते हैं। फिर कोल्ड, सर्दी का इलाज है, किसी को सर्दी लग जाए तो उसके लिए भी शहद और सिनेमन पाउडर को मिला के आप दे सकते हैं। फिर इनफर्टिलिटी, जैसे बच्चे नहीं होते किसी के बांझ होना, तो उसका इलाज भी इन दोनों चीज़ों के साथ किया जा सकता है। अपसेट स्टमक, मैदा ख़राब होता है जिस पे अभी हदीस भी सुने, जैसे गैस हो या कोई और चीज़, तो उसके लिए भी हनी दिया जा सकता है। हार्ट डिजीज़, दिल के अमराज में, मैं तो पढ़ रही थी तो मैं सोच रही थी हर बीमारी का इलाज तो इसमें आ गया। हमने तो खाम खा डॉक्टर्स को मुश्किल में डाला हुआ है। अल्लाह ताला सबको बचा के रखे और नेचुरल चीज़ों से ही हमें अपना इलाज करने की तौफीक दे। इम्यून सिस्टम, ये जो हमारी बॉडी में दिफा का निज़ाम होता है इम्यूनिटी, उसको भी स्ट्रॉन्ग करती है। जैसे कोई चोट लग गई तो ठीक हो जाना, इस तरह खाना हजम नहीं होता, उसका इलाज हनी के ज़रिए और सिनेमन के ज़रिए किया जा सकता है। फिर इन्फ्लुएंज़ा, नज़ला ज़ुकाम जो होता है बुढ़ापे के लिए, कि जैसे बड़ी उम्र में जो भी तकलीफ़ें आ जाती हैं ना उसके लिए। फिर पिंपल्स का इलाज, चले दाने, बल्कि बस जगह तो आता है कि इन शहद को लगाएं मुंह पे तो भी ठीक हो जाता है। ये पहले दौर में कहते हैं जब ज़ख़म आ जाता था तो उसके ऊपर भी लोग हनी लगाते थे। स्किन इन्फेक्शंस, स्किन के ऊपर कोई तकलीफ़ है तो उस पर भी आप लगा सकते हैं। वेट लॉस, वज़न कम करने के लिए, हैरत की बात है ना, है मीठी चीज़ लेकिन वेट लॉस करता है, और इसके लिए गर्म पानी में आप रोज़ सुबह उठ के खाली पेट अगर 1.5 चम्मच ले लें अपनी ज़रूरत के मुताबिक, तो इससे भी फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। कैंसर का इलाज है, अल्लाह के नबी ने कहा ना कि अल्लाह ताला ने हर बीमारी की दवा रखी है, तो वाकई इन चीज़ों को पढ़ते हुए देखते हुए लगता है कि ये सच है। फटीग, जैसे बाज़ दफ़ा इंसान थकन महसूस करता है या थोड़ा सा टेंस फील करे तो। बैड ब्रीथ, मुंह में से बू आए तो उसके लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप देखिए कि वाकई जितना आप नेचर के साथ रहेंगे ना, आप बाकी चीज़ों से भी बचे रहेंगे इंशाल्लाह। हेयर लॉस, बाल गिरे तो कोई रह गई है किसी की बीमारी तो है ज़रूर डॉक्टरों पे जाने की। सब कैंसिल करा दें अपने अपॉइंटमेंट, सब कुछ अल्लाह से दुआ करें। हाँ तो आप देख लीजिए कि इस सब में किया। एक और दिलचस्प फिगर जो मुझे पता चला शहद की मक्खी के बारे में, क्वीन मक्खी जो होती है ना ये अंडे देती है और 3 हफ्तों में 6,000 से 12,000 तक अंडे देती है। और इसका कद कामत दूसरों से थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, देखने से ही पता चल जाता है काम होता है। जैसे आज के दौर कैसे काम करनी है तो ये पूरा सेटअप जो होता है ये शहद की मक्खियों के पास होता है। एक लीड हुक्मरान है, जैसे गवर्नमेंट में है तो बाकी उसके वजीर है, और हर एक से एक एक काम करवा के फिर उनको वापस ले जाती है। और कुछ ऐसे हैं कि जिसमें लिखा हुआ था कि शहद की मक्खियाँ जब ये पूरा काम कर लेती हैं ना तो ट्रेन हो चुकी होती हैं ना, कुछ मक्खियाँ जो होती हैं वो ट्रेन हो जाती हैं तो वो उसी छत्ते के अंदर से फिर थोड़ा थोड़ा शहद उनको भी पीने की इजाज़त होती है और वो वहीं काम करती रहती हैं। लेकिन कुछ मक्खियाँ जो होती हैं ना वो ट्रेन होने की बजाय जब एक दफ़ा काम सीख लेती हैं तो वहाँ से भाग जाती हैं और जंगल में जाके फिर अपने नए छत्ते लगाना शुरू कर देती हैं। बल्कि जो मैंने पढ़ा उसमें था कि पाकिस्तान की जो मक्खियाँ हैं ना वो ट्रेन नहीं होती, वो एक दफ़ा सीख के ना फौरन भाग जाती हैं और जंगल में चली जाती हैं। तो लिहाजा पाकिस्तान ने यूरोप से वफादार मक्खियाँ बुलाई हैं कि जो मैंने कहा कि ये मक्खियों पे भी हमारे असरात हैं। हमारे इंसानों में से यही कमज़ोरी है ना कि हम किसी चीज़ में परफेक्शन तो चाहते नहीं। चार लफ्ज़ आ जाए हम कहते हैं सब आ गया, चलो अब क्यों किसी के नीचे लगे खुद ही कर लेंगे। तो कहते क्या वो बाहर से मुला रहे हैं मक्खियों के ताकि हम एक दफ़ा ये काम सीख जाएं तो फिर यहाँ काम करती रहें ताकि एक स्ट्रॉन्ग सेटअप बने, ना कि वो छोटी छोटी चीज़ों में जाए। तो आप कह सकते हैं ना कि फितरत में नेचर में हर चीज़ की मिसाल मौजूद है। इस पर एक बड़ा खूबसूरत मेरे पास हैंड आउट था तो एक कंपैरिजन किया हुआ था उसमें कि शहद की मक्खी के वर्सेस पूरा एक दिन का काम। कहीं मुझे मिला, अगर मेरे ईमेल में हुआ तो इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे, लेकिन अगर थोड़ी सी भी समझ इस्तेमाल करें तो पूरी चीज़ें हमें टैली होती हैं। यानी एक बंदा है मोमिन का और शहद की मक्खी का तकाबुल था, जो फितरत हमसे डिमांड करती है, जो सेटअप है दुनिया में कामयाबी का। आज आप देखिए कि कितना दीन है लेकिन दीन फैल नहीं रहा ना, कितने मुसलमान हैं लेकिन उनका कोई असर रसूख नहीं। उसकी वजह ये कि नेचर से फ़ायदा नहीं लेते। हर एक जो वो क्वीन बनना चाह रहा है या हर एक जो सलाहियत है भी नहीं वो काम करना चाह रहा है। शहद की मक्खी जो है ना देखेंगे इसमें डंक होता है, इसका डंक कितना कड़वा है, लोग जिसको भी कभी किसी ने काटा होगा सारी ज़िंदगी भूला नहीं होगा ना, इतना ज़्यादा होता है कि ज़ख़म फूल जाता है। लेकिन उसमें शहद भी है, यही खूबी मोमिन में होती है। रहमा बैनहुम, आपस में मीठे शहद की तरह, और अशिद्दा उलल कुफ्फार, काफरों के लिए दूसरे लोगों के लिए वो तरने वाला नहीं होते। पीछे हमने खजूर के दरख्त की मिसाल देखी थी तो ऐसे लग रहा था कि बंदा मोमिन खजूर का दरख्त होता है। आज ये सारी बातें करते कराते मुझे ऐसे लग रहा है कि अल्लाह मुझे शहद की मक्खी बना दे। कितनी अच्छी बात है, कितनी प्यारी चीज़ है कि मरी ख़त्म, सब कुछ ख़त्म, कितना कुछ दे के मरती है। आप सोचे कि सारी ज़िंदगी उसकी कोशिशों के बाद उसको क्या मिलता है, एक आधी चम्मच हनी की, और उसमें से एक कतरा भी खुद नहीं खाती, उसको इजाज़त ही नहीं होती। हाँ वो तो चखने में ही लगा दे, लाओ कैसा बना है और देखो कैसा टेस्ट है। इस तरह की चीज़ें वाकई नेचर से बहुत सीखने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वाकई हमें सीखने की तौफीक दे। यहाँ तक तिलावत सुनते हैं और फिर आगे चलेंगे।
الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون